नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी पूर्ण परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कालीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जल मरुमध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों के लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने टोरंटो कनाडा में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया और टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती साहस और वीरता की प्रतीक थी और उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहेगी। राष्ट्रपति ने आदिवासी समुदाय, वंचित वर्गों और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षक के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। राष्ट्रपति मुर्मू कल कूना राष्ट्रीय उद्यान का दौरा भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों से योग को नियमित जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बीयूराम वाघे के साथ आज ईटानगर के लोक भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी जीरो ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के युवा मामलों के विभाग के सहयोग से आयोजित किया था। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की सदियों पुरानी सभ्यतागत समझ को वैश्विक स्तर पर मिली मान्यता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि योग, जो कभी प्राचीन भारतीय परंपराओं का हिस्सा था, आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है और इसे संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक मार्ग के रूप में पहचाना जाता है। योग को मानवता के लिए भारत की सबसे बड़ी देन बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि तनाव, चिंता, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और निष्क्रिय आदतों के द्वार से योग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक सरल, किफायती और टिकाऊ तरीका प्रदान करता है। संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने की अपनी निरंतर कोशिशों के तहत राज्यपाल ने कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच अपनी पुस्तक का योग फॉर कॉमन हेल्थ चैलेंजेस की प्रतियां बांटी। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारत के उच्च योग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जल वर्तन करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया। इन पोतों का उद्देश्य युद्ध अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रया तटीय रक्षा के लिए टोरपीडो रॉकेट लॉन्च लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों की भागीदारी रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीका के राष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमरीका हॉर्मुज जल मरुमध्यक पर नई शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मीनाप 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय पात्रता शाह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पूर्ण परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों पर, विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवत तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। यह घटना उस समय घटी जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर में एकत्रित थे। घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और मलबे से 20 से 25 लोगों को निकाला गया। लगभग 15 घायल श्रद्धालुओं का पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल दम मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,00,000 मैट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। यह टैंकर है देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपनी नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। रूस के साइबेरिया के एक शहर में महीनों से बिना आरोप हिरासत में रखी गई 24 फिलीपींस नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। ये सभी आज मनीला पहुंच गए, जहां उनका स्वागत फिलीपींस के विदेश मंत्री थेरेसा लाजोरो ने किया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। दोनों नेताओं की मुलाकात कजान में आसियान रूस संबंधों की 35वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। विश्व ऊंट दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने संदेश में श्री शेखावत ने कहा कि ऊंट केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका के ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा। दाम्बुला के रंगीगिरी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गवाए 130 रन के पार पहुंच गई। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने टोरंटो कनाडा में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया और टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।